La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. A'udhu billahi minash shaitanil la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ala bihawlihi wa dana bitawlihi mani'i kulli 'azimatin wa azlin wa kashifi kulli ghanimatin wa fadlin. Ahmadahu ala awatifi karamihi wa sawabighi ni'amih wa uminu bihi awwalan badiya wa stahdihi qariban hadiya wa atawakkalu alayhi kafiyan nasira. Summa salatu was salam wat tahiyatu wal ikram ala nabiyyina wa maulana abil qasim muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mazlumin al-muntajabin al-mayamin alladhina adhhaballahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. Wal'anatu da'imatu ala a'da'ihim ajma'in min al-ana ila qiyami yawmiddin. Amma ba'du, faqad qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil majid. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Durud bheje Muhammad wa ali Muhammad. شہزادی کونین کی ذات کے حوالے سے جو عشرے کی ابتدا کل سے ہوئی, آج اس کی دوسری مجلس اور کر کی مجلس مقدمتاً عرض کی گئی کہ جس میں فضائل سیدہ کونین کو بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی وہ ذات کہ جسے پروردگار عالم اپنا خاتم النبیین بنا کے بھیج رہا ہے, اور ہر صفات حمیدہ اپنے اس نبی کے اندر اس نے رکھی ہے, تو ایسا شخص کہ جو کسی اعتبار سے کسی لحاظ سے نہ کسی انبیاء سے کم ہے نہ کسی زمانے میں کسی فرد سے کم ہے, تو جب وہ آدمی اس شہزادی کونین کا اس طرح سے احترام کرے کہ جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے چند روایتیں پڑھی, تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شہزادی کونین کی ذات کتنی بابرکت اور کتنی عزت اور باوقار ہے کہ اللہ کے رسول جیسا شخص بھی اس بی بی کا اتنا احترام کرے. کہ مجلس کی ابتدائی جس حدیث سے کی کہ اس میں آپ نے یہی سنا کہ جب شہزادی کونین آتی تھیں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, ماتھا چومتے تھے, اور اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جاتے تھے اور اپنی جگہ لا کے شہزادی کونین کو بیٹھا دیتے تھے. تو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ شہزادی کونین کا. لیکن ایک حدیث جو ہماری نظروں سے گزری, اگرچہ احترام شہزادی کونین میں کوئی شک و شبہ نہیں, کوئی ایسا مذہب جعفریہ کا ماننے والا کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو منزلت و فضیلت سیدہ کونین سے واقف نہ ہو یا اس کا اعتراف نہ کرتا ہو, یا اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ شہزادی کونین کا کیا مرتبہ ہے, تو وہ بیان اگر نہ کر پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی معلومات نہیں ہے, بلکہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کثرت کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر پاتا. لیکن یہ حدیث اور حدیث بھی کس کی؟ ہمارے زمانے کے امام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی، کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث، دیکھیں کون بیان کر رہے ہیں، امام معصوم، اور حدیث خالی پڑھ کے گزر جائیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی جتنا اس کو اگر تھوڑا سا تفسیر کیا جائے، بیان کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں امام کہنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ یہ ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے ماننے والوں کو کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نحنو حجتن علیکم، ہم خدا کی حجت ہے تمہارے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم حجت خدا ہے تمہارے اوپر، اس کا مطلب یہ کہ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی بھی مرحلہ پیش آئے، چاہے وہ اصول دین کا ہو یا فروع دین کا ہو، چاہے تمہاری اپنی نجی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا تمہارا تمہاری اس چیز کا تعلق اسلام سے یا شریعت سے ہو، چاہے تمہارا تعلق تمہاری وہ بات گھر کی ہو یا تمہاری وہ بات اجتماع کی ہو، چاہے وہ تمہاری بات انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ہر چیز میں تم کو ہماری طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ ہم حجت خدا ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں صرف آئمہ علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے شریعت کے معاملے میں، کہ حرام کیا ہے وہ امام سے پوچھیں گے، حلال کیا ہے وہ امام سے پوچھیں گے، نہیں، ہمیں اپنے امام کی اتباع ہر زندگی کے ہر پہلو میں کرنی ہے۔ ہمیں کیسے سونا ہے یہ بھی ہمیں اپنے امام سے پوچھنا پڑے گا، مولا ہم کیسے سوئیں، ہمیں بستر سے اٹھنا ہے تب بھی پوچھنا پڑے گا، مولا بتائیے کیسے بستر سے سو کے اٹھیں، کھانا کھائیں تو پوچھنا پڑے گا، مولا بتائیے کیسے کھانا کھائیں، کھانا ختم کریں تو پوچھیں مولا بتائیے کیسے ختم کریں۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم محتاج نہ ہو اپنے آئمہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے کہ مولا کی حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے کہ نحنو حجت علیکم، اے میرے ماننے والو، ہم تمہارے اوپر خدا کی حجت ہیں۔ اور حجت کا معنی میں نے بتایا کہ ہر مسئلے میں، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنے امام کی طرف رجوع کرنا ہے اور ایک ایک قدم ان سے پوچھ پوچھ کے اٹھانا ہے۔ امام بعد کا جملہ کیا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ والفاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ کون ہے؟ رسول کی بیٹی، ہم پہ حجت خدا ہے۔ یعنی جس طرح تم زندگی کے ہر شعبے میں ہماری طرف رجوع کرتے ہو، ہم اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں اپنی دادی، اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے، درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کہ امام معصوم گیارہویں امام فرمانے کہ یہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے، جس طرح تم ہمارے محتاج ہو، ہم اپنی جد فاطمہ زہرا کے محتاج ہیں۔ اور ایک روایت میں بھی عجیب جملہ ہے کہ کسی نے آگے معصوم سے سوال کیا کہ مولا یہ مسئلہ ہے، بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ تو امام یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ امام جو بھی بتاتا ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں بتاتا۔ مثلاً اگر گیارہویں امام کوئی شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، اور یہ بات جا کے کہاں ختم ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے رسول خدا سے سنا اور رسول خدا کو جبریل نے آ کے بتایا اور جبریل کو اللہ نے پیغام دے کے بھیجا۔ تو بات چاہے گیارہویں امام سے شروع ہو یا چھٹے امام سے شروع ہو، جا کے ختم کہاں ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے یہ پیغام دیا۔ تو امام کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ بات حدیث کے، یہ مسئلے کا حل جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میں بیان کر رہا ہوں یا میں نے کس سے لیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ جا کے بات ختم ہوتی ہے اللہ کے اوپر۔ لیکن جب راوی نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ مسئلہ ہے، بتائیے اس کا حل کیا ہے، غالباً چھٹے امام سے پوچھا، تو امام نے کہا کہ میں نے صحیفہ فاطمہ میں اس کا جواب یہ پایا ہے۔ یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے امام کو؟ چھٹے امام کہہ اس کا جواب دے سکتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، لیکن یہ کہنا کیا ضروری تھا کہ میں نے صحیفہ فاطمہ میں اس کا جواب یہ دیکھا اور صحیفہ فاطمہ میں یہ لکھا ہے؟ یہ امام چھٹے امام وہی حدیث کو مکمل کر رہے کہ جو گیارہواں امام سمجھا رہا ہے ہم کو، کہ دیکھو فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہیں، ہم شریعت کا جو مسئلہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے کہ ایک کتاب ہے کہ جس کا نام صحیفہ فاطمہ ہے، اور ہر امام کے پاس وہ کتاب رہی ہے، اس میں ما کان و ما یکون، دنیا سے جو مسائل ہو چکے وہ بھی لکھے ہیں اور جو ہونے والے ہیں وہ بھی لکھے ہیں، کہ جو ہو رہے ہیں ان کا بھی حل موجود ہے۔ تو آئمہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے، کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں، صحیفہ فاطمہ میں دیکھ کے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس بی بی کی عظمت یہ ہے کہ ہمیں شریعت بتانے والے जिससे मदद हासिल करते हैं वो सहीफा है फातिमा, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का सहीफा है। तो फजीलत इससे बढ़ के और क्या बयान की जाए। लेकिन कल की दो चार चीजें रह गई, उसको बयान करके मैं आज के मौजू पर आ जाऊं कि फजीलत फातिमा के लिए कल रसूल की हदीस बयान की गई कि पैगंबर इस्लाम की हदीस आपके सामने बयान की गई, लेकिन एक हदीस के जो नहजुल बलागा के अंदर है, हदीस नहीं है बल्कि मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात को माविया ने खत लिखा और उसमें बहुत सारे इतराजात किए, बहुत सारे इल्जामात लगाए। ये मकतूब नंबर 28 है, क्योंकि नहजुल बलागा में तीन चीजें हैं। पहले जो है वो पहले शुरू के जो तीन हिस्सों में तकसीम है, एक वो है कि जिसमें खुतबे हैं पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा वो है कि जिसमें मकतूब है कि इमाम ने अगर किसी को कोई खत लिखा है या किसी को कोई लिख के नसीहत की है तो वो सारी उसके अंदर मौजूद है, उसे कहते हैं मकतूब। कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जितनी किताबत की है, जितने खत और किताबत की है वो सारे उसमें जमा किए। और आखिरी हिस्सा क्या है, उसमें हिकमत है कि इमाम ने जो इरशाद किया, कोई हदीस बयान की या कोई चीज़ बयान की कि जो ना खुतबा, जो ना खुतबा है और ना मकतूब है, हदीस है, तो उसे उन्होंने हिकमत के नाम से सैयद रजी ने लिखा है। तो ये जो मैं चीज़ बयान कर रहा हूँ ये है मकतूब नंबर 28 जो मौलाए कायनात ने माविया को उसके लिखे हुए खत का जवाब दिया। अगरचे बहुत लंबा खत है, पूरा खत नहीं पढ़ना, खत के बीच में मौला, अच्छा ये खत बहुत अच्छा है, नंबर याद कर लें, घर जाके जरूर पढ़िए अगर टाइम मिल जाए, कि देखें इसके अंदर मौला ने कितना फसाहत और बलागत से काम लेते हुए शुरू की जब आप लाइनें पढ़ेंगे, चाहे पूरा खुतबा ना भी पढ़ें, पहला चाहे पूरा ये मकतूब ना भी पढ़ें, सिर्फ शुरू का पढ़ लें, देखिए इसके अंदर कितनी ज़राफ़त के जरिए से मौलाए कायनात ने छोटी छोटी दो चार मिसालें दी हैं, ज़रबुल मसल कही है। उसके बाद मुफ्ती जाफर साहब की जब आप उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लताफत है, इमाम ने दो जुमले के अंदर उसको कितनी हकारत और कितना जलील किया, ये समझ में नहीं आता आम पढ़ने वाले के लिए। लेकिन जब मुफ्ती जाफर जैसा शारे हो, शरा करने वाला हो, तो इंसान चौंक उठता है कि मौला ने दो जुमले के अंदर इसको क्या समझा दिया। इसी खुतबे के अंदर मौला एक मरतबा माविया को मुखातिब करके कहते हैं, मैं ये चीज क्यों बयान कर रहा हूं, फजीलत फातिमा जहरा को समझाने के लिए कि शख्सियत फातिमा जहरा वो है कि अगर कहीं मौला को अपनी हकानियत साबित करनी हो, अपनी फजीलत साबित करनी, जबकि मौला किसी एतबार से कम नहीं है, खाली अपनी फजीलतें बयान करना शुरू कर दे तो सामने वाला अमीर शाम किसी काबिल नहीं है मौला के मुकाबले में। लेकिन मौला कहते नहीं, खासकर जो लेके आए हैं इसलिए कि तुमको पता चल सके कि हमारे दरमियान क्या है। और मौला पांच चीजों पे उसके सामने खत में लिख के भेज रहे, देखो हमारे पास ये, तुम्हारे पास क्या है। उसमें मौला कहते कि मिन्ना मिन्ना नबी हो व मिनकुल मुकज्जिब, तुम किस बात पे घुमंड करते हो, तुम्हारा खानदानी स्टेटस क्या है, आज जो तुम शाम पे कब्जा करके बैठ गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हकीकी वारिस हो। इसलिए कि अगर तुम्हें अपने खानदान पे बड़ा नाज है तो तुमसे अच्छा खानदान तो मेरा है। कि मिन नबी हो व मिनकुम मुकज्जिब, हमारे खानदान से नबी मुरसल है और तुम्हारे दरमियान से नबी को झुठलाने वाला। फसाहत और बलागत इसी को कहते हैं कि सामने वाले से कोई लंबी बात नहीं की जाती है, एक जुमले के अंदर पूरा उसका शनाख्ती कार्ड बता दिया जाता है कि देखो तुम ये हो हम ये हैं। कहा कि मिन नबी व मिनकुम मुकज्जिब, हमारे दरमियान हमारे खानदान से नबी है, तुम्हारे दरमियान कौन है, नबी को झुठलाने वाला। और दूसरा इमाम क्या कहते हैं, कहते हैं मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल अहलाफ, कि हमारे दरमियान हमारे खानदान से असदुल्लाह है। असदुल्लाह कौन, हजरत हमजा, कि जो जंग उहद में शहीद हुए। मौलाए कायनात फख्र किस पे कर रहे हैं, इस जंग उहद में शहीद होने वाले अपने चचा के ऊपर, कि तुम किस बात पे फख्र करते हो, हमारे दरमियान से नबी है, हमारे दरमियान से अल्लाह का शेर है और तुम्हारे दरमियान से क्या है, वो मिनकुम असदुल अहलाफ। असदुल अहलाफ कौन है, माविया अबू सुफियान के जंग खंदक में अबू सुफियान ने सारे अरब कबाइल को जमा करके ये कसम खाई थी, क्या सारे मिलके कसम खाते हैं कि इस नबी को, इस मोहम्मद को कत्ल करेंगे। तो मौलाए कायनात किस बात पे फख्र कर रहे हैं कि देखो हमारे दरमियान अल्लाह का शेर है, हमजा जैसा आदमी हो, तुम्हारे दरमियान क्या है, वो शख्स है कि जो रसूल को कत्ल करने की कसम खाता है। वह मिन्ना सैयद शबाब अहले जन्नत वह मिनकुम सिबयतुन नार, हमारे दरमियान हमारे खानदान से जवानाने जन्नत के सरदार है हसन हुसैन, और तुम्हारे खानदान से क्या है, जहन्नुमी लड़के। यानी मौला कायनात एक ही चीज बताते जा रहे हैं, देखो हमारी फजीलत देखो, अपनी फजीलत देखो, कि हमारे दरमियान सारे वो अफराद है कि जो खुदा परस्त से खुदा की तरफ बुलाते थे, और तुम्हारे दरमियान कौन है कि जो सब के सब ना खुदा परस्त से और ना खुदा की तरफ लेके आते थे और खुदा परस्तों को कत्ल करते थे। और आखिरी जुमला क्या है, वो यही कि जो आज का मौजू है कि वह मिन्ना खैर निसाइल आलमीन। मौला फख्र कर रहे हैं किसके ऊपर, क्या खानदान अहले बैत में और खवातीन नहीं थी, क्या जब ये खत मौला कायनात ने लिखा तो क्या उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जिंदा नहीं थी, क्या दूसरी उम्महात जिंदा नहीं थी। मौला ये भी तो कह सकते थे कि हमारे दरमियान उम्मे सलमा है, हमारे दरमियान मसल फलानी है, हमारे दरमियान फलानी है, लेकिन किसी को नहीं चुना, बल्कि मौला क्या फख्र कर रहे हैं कि मिन्ना खैरुन निसाइल आलमीन, हमारे दरमियान आलमीन की बेहतरीन औरत जो है वो हमारे दरमियान से है। और उसके बाद ऐसा जरबा लगाया, ऐसा जवाब दिया अमीर शाम को कि इसके बाद कभी खत लिखने की नौबत नहीं आई होगा, कि जरा सी गैरत रही हो। उसके बाद इमाम ने क्या कहा कि मिनकुम हम्मालतल खतब, हमारे दरमियान फातिमा जहरा जैसी औरत है कि जो खैरुन निसाइल आलमीन, और तुम्हारे दरमियान कौन औरत है कि जो अपने कांधों पर अपने सर पे दोजख की आग को उठाए घूमती है। तो शहजादी कौनैन की वो जात है कि जिसे मौला कायनात भी अगर दुश्मन के मुकाबले में फख्र किया तौर पे पेश करते हैं, तो वो शहजादी कौनैन की जात है कि इतनी फजीलत और इतना मर्तबा। मौला कायनात ने कभी वो काम नहीं किया कि जो रसूलुल्लाह ने ना किया। जब नजरान के ईसाइयों से मुबाहले का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने भी किसी और को लेके नहीं गए, फातिमा जहरा को लेके गए थे। तो वो नजरान के ईसाई थे, ये नाम निहाद मुसलमान था। अब अगर मुबाहले के लिए अली किसी को लेके जा रहा था, उसी को, जिसे रसूल खुदा लेके गए फातिमा जहरा की जात को। तो इतनी फजीलत और इतना मर्तबा कि जिसके एहतराम, जिसके वकार और जिसकी मोहब्बत का इतना फायदा है। अभी एक हदीस आएगी कि जिसमें आप मुलाहिजा करेंगे कि कितना एहतराम इज्जत इनकी मोहब्बत दिल में रखने का कितना फायदा है। लेकिन उससे पहले कल ये मैंने हदीस थोड़ी सी पढ़ी थी, आज पूरी पढ़ूंगा कि जब ये हदीस मैंने पढ़ी कि हजरत आयशा से नकल की हदीस पढ़ी थी कि जब अल्लाह के रसूल को मैंने देखा कि जब भी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी फातिमा जहरा आती थी अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते थे, हाथ थामते थे, फातिमा को लेके आते थे अपने करीब, हाथों का बोसा देते थे, माथे पे पेशानी पे बोसा देते थे, और अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पे लाके शहजादी को बैठाते थे। तो इस रवायत को शहर इब्न आशोब नकल करते हैं इब्न अब्बास से। देखिए रसूल का किरदार कभी खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। कुफार ने हर तरह की अजियत दे दी, हर तरह का जो सता सकते थे रसूल को सताए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ए रसूल तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि ये सादिक और अमीन का लकब ही रसूल को काफिरों से मिला है कि काफिर भी रसूल के किरदार के बारे में शक नहीं करते थे। यानी इतना मजबूत रसूल का किरदार है, इसलिए कि अगर रसूल के किरदार में एक लहजे के लिए भी तजब्जुब या तजलजुल आ जाए तो सारा तौहीद, सारी नबूवत, सारी इमामत, सारी कयामत, सारा इस शरीयत, सारा इस्लाम एक लहजे में डर से गिर के खत्म हो जाए। इतना सॉलिड और मजबूत किरदार होना चाहिए पैगंबर का कि अपने तो अपने गैर भी इस बात को माने कि रसूल जो कह रहा है यकीनन वो अल्लाह ने कहा होगा। तो इब्ने शहर इब्ने شہر عاشو بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ کان النبی اذا اراد سفرا، کہ جب بھی کبھی رسول مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، مثلا جنگ کرنے جا رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اچھا اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے آدمی جا رہا ہے یا کہیں ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں پتا ہے کہ شاید مر جائے واپس نہ آئے، تو انسان اپنے عزیز و اقارب سے مل کے جاتا ہے کہ آخری دیدار کر لوں، آخری زیارت کر لوں، نہ جانے اس کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کہ جیسے آج کل کراچی میں ہو گیا ہے کہ جب مومن گھر سے نکلتا ہے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں شام کو واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، چاہے رات بھر بیوی سے جھگڑا ہوتا رہے لیکن صبح جو ہے وہ دوستی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیوی کو کہ شوہر جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا بم دھماکہ ہو جائے گا یا کسی روبری میں مارا جائے گا، تو یہ محبت اتفاقی ہوتی ہے کہ پتا ہے جائے گا واپس نہیں آئے گا تو ہر آدمی ہمدردی کرتا ہے، لیکن رسول کے ساتھ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے نا، کہ رسول جب بھی مدینے سے نکل رہے ہیں تو ہمیشہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، رسول جنگ کے علاوہ کتنی مرتبہ مدینے سے گئے، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اذا ارادا کان النبی اذا ارادا سفرن، کہ نبی جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تھے، مدینے سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تھے، تو جو آخری دروازہ ہوتا تھا، جو آخری انسان ہوتا تھا کہ جس سے اللہ کے رسول ملتے تھے، وہ فاطمہ زہرا ہوا کرتی تھی۔ وَإِذَا قَدِمَ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ أَحَدًا بِفَاطِمَةَ، اور جب مدینے سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلا شخص کے جس سے اللہ کے رسول ملتے تھے وہ فاطمہ ہوا کرتی تھی، یعنی مدینے سے جب نکلے تو آخری شخص کے جس سے اللہ کے رسول ملاقات کر کے جائے وہ فاطمہ زہرا کی ذات، اور مدینے میں جب داخل ہو تو جو پہلا شخص کے جس سے رسول ملاقات کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا کی ذات۔ اس حدیث کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں کہ لو لم یکن لہا عند اللہ تعالی فضل عظیم لم یکن رسول اللہ یفعل معہ ذلک، اگر یہ تعظیم، یہ عزت، یہ شرف فاطمہ زہرا کا خدا کے نزدیک نہ ہوتا تو کبھی اللہ کا رسول اتنی تعظیم نہیں کرتا۔ جملہ عجیب نہیں ہے کہ جب مدینے سے رسول نکلے تو آخری شخص فاطمہ، جب مدینے میں آئے تو سب سے پہلا شخص فاطمہ، تو کیا کہتے ہیں کہ لو لم یکن لہا عند اللہ تعالی فضل عظیم، اگر خدا کے نزدیک فاطمہ زہرا کی اتنی عزت و تعظیم نہ ہوتی تو لم یکن رسول اللہ یفعل ذلک، تو کبھی بھی اللہ کے رسول یہ کام نہ کرتے کہ آخری شخص فاطمہ ہوتی اور آنے کے بعد پہلی ملاقات والا شخص فاطمہ ہوتی۔ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اذا کانت ولدہ، اس لیے کہ فاطمہ رسول کی اولاد ہیں، رسول کی بیٹی ہیں۔ وقد امر اللہ بتعظیم الولد للوالد، اور خدا نے کتاب خدا میں یعنی قرآن میں جو حکم دیا ہے وہ اولاد کو دیا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما، کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، اپنے والدین کا احترام کرو، ولا تقل لهما اف ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ ساری چیزیں اولاد کے لیے آئی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ نہ کرو، کہیں یہ نہیں آیا کہ جب تمہاری بیٹی آ جائے یا بیٹا آ جائے تو باپ کے لیے کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، یا کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جب تمہاری بیٹی آ جائے تو اپنی مسند چھوڑ کے ہٹ جاؤ، اپنی بیٹی کو جگہ دو۔ یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک فاطمہ کا اتنا احترام نہ ہوتا تو کبھی یہ کام اللہ کے رسول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے جو اللہ کے نبی لے کے آئے اس میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو۔ ولا يجوز ان يفعل ما ذلك وهو بضد ما امر به امته عن الله تعالى، اس لیے کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، اور رسول اللہ اس کا الٹ کام کر کے دکھائے بیٹی کا احترام کرے، تو یہ تو حکم خدا کی نافرمانی ہو گئی، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا رسول خدا کی نافرمانی کرے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ یہ اللہ کے رسول کا فاطمہ کا احترام کرنا، یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ ہاتھ کو چومنا، یہ پیشانی کو چومنا، یہ سینے پہ سر رکھ کے ایسے رگڑنا کہ جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ رگڑا جاتا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے حکم تھا کہ جسے اللہ کے رسول انجام دیتے تھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اتنی فضیلت اور اتنا احترام، एक हदीस और है, लेकिन जब तकरीर शुरू करो तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत है, लेकिन दो चार बातें करने के बाद जब घड़ी देखो तो लगता है कि घड़ी की स्पीड जो है वो कहीं ज्यादा तेज है कि जो रुक ही नहीं रही है। अगर टाइम बचा तो उसको आखिर में बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बहुत अहम चीज है कि शहजादी कौन है इनके। कल मैंने एक हदीस पढ़ी ना आपके सामने कि काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, बच्चा बच्चा जानता है कि फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसका तर्जुमा गलत किया जाता है, कहा जाता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर नहीं, जिगर का, जिगर तो कबद को कहते हैं, यहां लफ्ज कबद इस्तेमाल नहीं हो, बजा इस्तेमाल हुआ, बजा का माने जिस्म का टुकड़ा। तो रसूल क्या कह रहे हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो कल भी मैंने ये अर्ज किया कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो जो फजीलत अल्लाह के रसूल के पास है वो सारी फजीलतें फातिमा जहरा में बेकमाल और अतमम पाई जानी चाहिए सिवाय वही के। सिर्फ वही फातिमा जहरा पे नहीं आएगी, उसके अलावा सारी चीजें, सारी फजीलतें कि जो अल्लाह ने अपने नबी को दी वो फातिमा जहरा को मिलनी चाहिए और मिली भी हैं। तो जब रसूल खुदा फसाहत और बलागत के एतबार से किसी से कम नहीं थे तो फातिमा जहरा में भी ऐसी फसाहत और बलागत होनी चाहिए कि जिसका इजहार शहजादी ने कब किया कि जब फिदक के सिलसिले में दरबार में आई। शहजादी, कल मैंने ये बात अर्ज की कि शहजादी की विलादत से पैगंबर इस्लाम के ऊपर जो एक इल्जाम था ना कि रसूल तो बे औलाद है, इनका कोई बेटा नहीं, इनके मरने के बाद इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो खुदा ने शहजादी के जरिए से रसूल की नस्ल को जारी रखा। एक तो रसूल की तोहमत इस तरह खत्म कर दी, और दूसरी ये कि जब दरबार में आई है इतना फसीह बली खुतबा दिया है कि लोग ये समझे कि रसूल खुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। इस खुतबे के पढ़ना बहुत मुश्किल है, हालात और जमाने के एतबार से बहुत कम पढ़ा जाता है, और मैं भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चंद चीजें इसमें से बयान करके निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा कि यह खुतबा जब शहजादी दरबार में आई है बयान करने के लिए, तो यहां थोड़ी देर के लिए मैं अपने सामने बैठे हुए मर्द हजरात से माजरा चाहते हुए कि ये मुखातिब आपसे नहीं हूं बल्कि पर्दे में बैठी खवातीन से हूं कि शहजादी कौन है जब खुतबा देने आ रही है दरबार के अंदर। तो जब आप मजलिसों में सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि शहजादी का घर कहीं और होगा, मस्जिद का मिंबर कहीं और होगा कि जहां पे ये दरबार सजा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। जो हज करके आ चुके हैं वो तो जानते ही हैं कि जहां पे आज रसूल अकरम की कब्र है वही रसूल का हुजरा था, और उसी के बराबर में शहजादी कौनैन का हुजरा था, तो कितना फासला होगा, दीवार से दीवार मिली हुई है। और सबके दरवाजे बंद होने का जब हुक्म आ गया तब भी हुक्म यह था अल्लाह का कि ए रसूल अली का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, वो मस्जिद में ही खुलेगा। तो अगर हम ये मान लें कि रसूल के इंतकाल के बाद वो दरवाजा बंद कर दिया गया, वरना अगर वो दरवाजा खुले तो मस्जिद के अंदर ही खुल रहा है, वो तो और भी रास्ता शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो दरवाजा बंद भी था और शहजादी दूसरी तरफ से घूम के आई तब भी कितना टाइम लगेगा। इतने से फासले को तय करने के लिए शहजादी का हिजाब कैसा था, पर्दा कैसा था। रवायत का जुमला है कि शहजादी ने इतना बड़ा मकना पहना हुआ था कि जो सर पे से गुजरने के बाद कांधे पे से होता हुआ और काफी नीचे तक आया हुआ था, और इतनी चादरें ओढ़ी हुई थी आपने कि जब इंसान चलता है कोई चीज पहन के तो कदम हिलने से वो चीजें हिलती हैं। अब अकबा जैसे मैं पहन के चलूं तो पता चलता है कि कदम उठा रहे। तो रवायत का जुमला है कि जब शहजादी दरबार में आई है ना तो इतनी चादरें ओढ़ी हुई थी कि कदम उठाती थी तो चादर से पता नहीं चलता था कि कदम हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। आज मानने वाले को यही पैगाम दूंगा, मानने वालियों को, कि देखो शहजादी का गम मनाने आई हो ना तो ये पैगाम लेके जाओ। जमाना कितना मॉडर्न हो जाए, गुमराह हो जाए, शहजादी पे अगर आंसू बहा रही हो देखो इस बात का ख्याल करो कि कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी चादरें नीची हो जाए, तुम्हारे पर्दे सुस्त हो जाए। तुम शहजादी कौनैन से ज्यादा मर्तबा तो नहीं रखती ना। तुम्हारे वालिद का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है। तुम्हारे शौहर का नाम अली मुर्तजा तो नहीं है। तुम्हारे बच्चों का नाम हसन हुसैन तो नहीं है। तो जो इतनी कदर मंजिलत वाली खातून इतना पर्दा करे, हमारी खवातीन तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। तो बस इस बात का ख्याल करना है कि देखो ये अय्याम फातिमीन में खाली आंसू नहीं बहाना, मकसद जहरा को बाको रखो, या आंसू बहाने से कहीं ज्यादा फजीलत है। शहजादी की मुसीबत पे दो आंसू बहाने के बाद निकल जाओ और बेपर्दा, ये उस आंसू से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान ना रोए और इतना अच्छा पर्दा करके निकले कि शहजादी कहिए मेरी मानने वाली जा रही है। और अगर इस पर्दे की वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए तो यकीनन जानो रोज कयामत शहजादी तुम्हारा दिफा करेंगी। तो जब दरबार में शहजादी आई है ना, इतना पर्दा, इतना अच्छा हिजाब और इतनी कनीजों के झुरमट में आई है कि कोई पहचान नहीं सकता कि शहजादी इसमें से फातिमा बिनते मोहम्मद कौन है। और आने के बाद खुतबा कहा, यह खुतबा इतना बेहतरीन खुतबा है, इतनी शरह इसके ऊपर लिखी गई है कि अल्लामा मजलिसी ने भी इसको लिखा है बिहार के अंदर, और सैयद रजी ने भी इसको लिखा। और आने के बाद इसके अंदर अकायद भी बयान किए शहजादी ने, इसके अंदर अहकाम इस्लाम की तौसी भी बयान किए कि नमाज क्यों वाजिब की गई, रोजा क्यों वाजिब किया गया, जिहाद क्यों वाजिब किया गया। लेकिन आने के बाद सबसे पहला जो खुतबा हमदोसना के बाद जो जुमला कहा वो ये कि क्यों कुरान को छोड़ दिया, कुरान से तुमने पीठ को क्यों मोड़ लिया। और उसके बाद शहजादी ने कुरान के वो फजाइल पढ़े हैं कि मैं इसको कोट करके लाया आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले कुरान के ऊपर कुछ बातें हो जाएं। कि शहजादी भी यही कह रही है अपने दरबार में अपने खुतबे के अंदर कि कुरान क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने, और पैगंबर इस्लाम की हदीस भी आज ही के दिन के लिए है, यानी आज ही के जमाने के लिए। आज हर मोमिन परेशान, मोमिन क्या, सारी दुनिया परेशान है, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मोमिन हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं कि जो परेशान ना हो। हर आदमी किसी ना किसी तरीके से परेशान है, मुसीबत में मुब्तला है। हमारे ये 14 मासूमीन वो हैं कि जो अपने मानने वालों को ऐसी तालीम दे के गए कि उसके बाद ना कोई परेशानी हमारे लिए परेशानी है, ना कोई मुसीबत हमारे लिए मुसीबत है। और अल्लाह के रसूल ने एक इतनी बेहतरीन हदीस है कि कहा कि जब तुम्हारे ऊपर मजालिम और फितने दुनिया के आसमान की स्याही की तरह छा जाए, कि जिस तरह सूरज जाता है सारी जिस जगह से सूरज चला जाए कितना अंधेरा छा जाता है, तो कहा कि जब तुम पे मुसीबत और परेशानी आसमान की स्याही की तरह छा जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम कुरान की पनाह में चले जाओ, तुम्हें चाहिए कि कुरान की पनाह लो। कुरान कितना अहम है कि अल्लाह के रसूल भी जाते जाते अपने मानने वाले को कह के जा रहे हैं कि कुरान से पनाह लेना। अब इससे मुराद अल्लाह के रसूल की क्या है नहीं मालूम, कहीं इस कुरान से मुराद वो तो नहीं है कि जो अल्लाह के रसूल कह गए कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कहीं अल्लाह के रसूल ये तो नहीं कह के चले गए कि देखो कुरान से पनाह लेने का मतलब ये है कि अली की पनाह में आ जाओ, देखो अली जैसे जिंदगी गुजारे तुम भी ऐसी जिंदगी गुजारना। तो अगर अल्लाह के रसूल की मुराद ये हो तब भी हमें कुरान को अपने साथ रखना है, कुरान की तिलावत करनी है, क्योंकि मौला कायनात का पसंदीदा काम यही कि कुरान की तिलावत करें। बल्कि मौलाए कायनात के सारे इमाम, रवायत में है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम 3 दिन में कुरान खत्म किया करते थे। किसी ने पूछा कि मौला आप 3 दिन में कुरान क्यों खत्म करते हैं? जो मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पे जो आयत पढ़ी कि सूरह मुजम्मिल की आयत है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर के आराम आराम से पढ़ो। और 8वें इमाम से आके रावी सवाल करके मौला आप 3 दिन में कुरान क्यों खत्म करते, 3 दिन से कम में खत्म कर ले। तो मौला ने कहा हमें कुरान खत्म करने में 3 दिन इसलिए लग जाते हैं कि हम उसके मतालिब में, मफाहिम पे, उसके माना पे, उसके जो गहराइयां है, जो उमूक है, जो खुदा समझाना चाहता है उसमें तदब्बुर और फिक्र करते हैं, इसलिए 3 दिन लग जाते हैं। वरना हबीब इब्ने मजाहिर के बारे में रवायतों में लिखा है कि एक रात में एक कुरान खत्म किया करते थे। आयतुल्ला शहीद मुताहरी हर रोज एक पारा खत्म किया करते थे। और इमाम रजा अलैहि सलाम के हरम में एक आलिम दीन है नखुची के, जिनकी कबर है उस सहन में गालिबन के जहां पे मरीजों को लाके बांधा जाता है, वहां पे जो सहन के सामने जो दरवाजा है, इस दरवाजे के बिल्कुल बीच में इनकी कबर है। पहले तो उस पर लिखा हुआ था कि नखुची की कबर है, तो जिनको ये वाकया पता था उसकी वजह से इतना रश होने लगा, इतना रश होने लगा कि हरम वालों ने कबर पे से उनका नाम हटा दिया ताकि किसी को पता ना चले कि यहां दफन कौन है, रास्ता ब्लॉक हो जाता था। ये इस जगह क्यों दफन है? इनकी यहां पे इस जगह पे इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। इमाम रजा एक आम आदमी, एक आलिम दीन से क्यों मिल रहे हैं? इनमें खसूसियत क्या है? इनकी खसूसियत यह है कि रमजान में 15 कुरान खत्म करते हैं, यानी 2 दिन में एक कुरान। अगर 30 दिन का महीना है तो 2 दिन में एक कुरान। तो हमारे उलमा का ही तरीका भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान की तरफ लोगों को तरगीब दी कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि जब कुरान तुम पढ़ोगे तुम्हारा दिल मुनव्वर होगा, जब दिल मुनव्वर होगा तो हकीकत तुम्हें समझ में आएगी। और अगर कुरान नहीं पढ़ोगे, कुरान से उनसियत पैदा नहीं करोगे तो तुम्हें मार्फत भी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि तुम्हारा दिल वो बर्तन है कि जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत आयमा की मोहब्बत आएगी, लेकिन जब ये बर्तन ही गंदा हो तो बताइए गंदे बर्तन में खाना कौन देगा। और मौलाए कायनात की अजीब हदीस है कि देखो जब कुरान पढ़ो ना तो कुरान शुरू करते खत्म करने के चक्कर में नहीं पड़ जाना। बाद लोग ये भी करते ना कि बस शुरू किया, चाहते कि 3 दिन में खत्म हो जाए, 4 दिन में खत्म हो जाए, धड़ाधड़ पड़ापड़ लगाए। मौलाए कायनात कहते कि इस चक्कर में कुरान नहीं पढ़ना कि बस शुरू किया और खत्म हो जाए, नहीं, बल्कि कुरान वरतिल कुरान तरतीला ठहर ठहर के सोच सोच के पढ़ो, देख देख के पढ़ो। फिर मौलाए कायनात क्या फरमाते कि देखो कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, जब इसमें किस्सा आए ना तो उससे इबरत हासिल करो, जब इसके अंदर किसी ऐसे हुक्म के बारे में बात आए कि जिसके लिए तुमको मना किया गया उससे रुक जाओ, और जिसके बारे में हुक्म दिया जाए उसको कर लो, और इसके मफाहिम और मतालिक की तरफ रुजू करो। अल्लामा मजलिसी हमारी शियत के वो आलिम दीन हैं कि कुछ उलमा हमारी शियत के ऐसे कि अगर इनको शियत से हटा दिया जाए तो शियत ही ख़त्म हो जाएगी, जैसे शेख तूसी, अल्लामा मजलिसी, शेख मुफीद वगैरह, कि सारी शियत इन्हीं 4-5 पे मुनहसर है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इतना काम किया, खुसूसन अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह, कि बिहारुल अनवार एक ऐसी किताब लिख के चले गए कि इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, शियत का इंक्लोसाइपीडिया है, जो कुछ ढूंढना है। बिहारुल अनवार क्या मतलब? नूरों के समंदर, यानी एक समंदर नहीं है, कई अनवार भी जमाए, बिहार भी जमाए बाहर की, यानी नूरों का। अब समंदरों की तो उर्दू में कुछ जमा ही नहीं, मैं क्या जमा बनाऊं, यानी नूरों की समंदर ही समंदर, इसलिए कि इसके अंदर हर चीज है इमाम अलैहिस्सलाम से। ये खुद इतने बड़े आलिम दीन हैं कि इनकी फजीलत पे सिर्फ ये बयान करूं कि जब ये पैदा होने वाले थे तो इनके वालिद ने एक ख्वाब देखा गालिबन कि ये बैठे हैं और आइमा अलैहिस्सलाम का दरबार लगा, सारे आइमा बैठे हैं, और उसी महफिल में इनकी गोद में एक बच्चा ला के दिया गया और कहा गया कि ये हमारे उमूर को जिंदा करेगा, हमारी तालीमात को जिंदा करेगा। उसके बाद अल्लाह मजलिसी पैदा हुए कि जिनका नाम मोहम्मद बाकर मजलिसी रखा गया। इनके वालिद जिनको मजलिसी अव्वल कहते हैं उनका नाम मोहम्मद तकी है। तो ये मोहम्मद तकी अपने बेटे यानी बाकर मजलिसी को, क्योंकि जो कोई आम आदमी नहीं है, इतने बड़े आलिम दीन हैं, दो वसीयतें करते हैं कि देखो बेटा मैं तुम्हें दो वसीयतें करता हूं, इन पर पाबंदी से अमल करो, देखो कितना तुम्हें दुनिया में फायदा नजर आएगा। और पहली वसीयत क्या करते हैं? पहली वसीयत यही करते हैं कि बेटा हर रोज एक पारा खत्म करो, यानी एक पारा, एक कुरान, एक पारा पढ़ने की इतनी फजीलत है। बल्कि एक रवायत में है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो ना तो 300 आयतें कहीं से भी पढ़ लो कुरान की, 300 आयतें, 300 आयतें पढ़ के खुदा की बारगाह में दुआ करो, देखो खुदा तुम्हारी कैसी दुआ कबूल करता है। अल्लाह मजलिसी के वालिद अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि ये एक काम तो ये करो कि हर रोज कुरान पढ़ो, जो कि जो हमारा मौजूद हमने बयान कर दिया, और दूसरी चीज अगर हमारे मौजूद से मुताल्लिक नहीं लेकिन बहरहाल काम की तो है कि नहजुल बलागा के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक वसीयत है कि जो मकतूब नंबर 31, जब मौला जंग सिफीन करके वापस आ रहे थे तो एक जगह पे आप रुके, और आपने रुकने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक वसीयत की, बहुत लंबी वसीयत है और इसे वाकई पढ़ना चाहिए। अल्लामा मजलिसी के वालिद कहते हैं अपने बेटे से कि दो काम करो और देखो तुम अपनी दुनिया में इसका फायदा देखो, एक क्या कि हर रोज एक पारा पढ़ो, और दूसरी क्या कि ये जो वसीयत नामा है ना 31 नंबर का, इसे रोज पढ़ा करो। एक पैगाम तो अशरे फातिमा जहरा से ये पैगाम आपको मिल गया कि रोज इसको जरा पढ़ के तो देखो, कि देखो इसके अंदर क्या क्या मौला ने अपने बेटे को कहा है, इससे इसमें ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं नहीं पाई जाती। हमारे उलमा का ये तरीका रहा कि सूरह मोमिनून और इस कसम की जो सूरह है कि जिसमें मोमिन को डराया गया, धमकाया गया, मोमिन को बुरे अमाल से रोका गया, तो कहते हैं कि हम ये सूरह मोमिनीन पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस आयतों में कितनों पे हम फिट होते हैं और कितनों पे अनफिट हैं। टाइम मेरा पूरा हो गया, और वो चीज तो रही गई कि जो शहजादी कौनैन ने कुरान का के बारे में बताया है, इंशाल्लाह वो कल बयान हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 8 मजलिसें बाकी है ना। कि देखें शहजादी कौनैन ने कुरान की क्या फजाइल बयान किया कि देखो इसकी क्या फजीलत है, और ये अशरे मजालिस का इनेकाद किया ही इसीलिए जाता है कि देखो जो कम और कसरी रह गई है अपने दरमियान, इन्हीं अशरे मजालिस से अपने अंदर वो चीजें पैदा कर लो अगर नहीं है, और अगर बुरी चीजें तो इन्हीं अशरों की बरकत से इसको खत्म कर दो। अब बेहतरीन तरीका ये है कि खुदा को दुनिया में दो चीजें पसंद है, एक गुनाहगार की आंखों से निकला हुआ आंसू और एक कदम के जो मस्जिद की तरफ बढ़े। कितना ही गुनाहगार इंसान क्यों ना हो, अगर आंखों में आंसू आ जाए और एक मर्तबा खुदा की बारगाह में क्या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, खुदा माफ कर देता है कि देखो ये गिरिया कर रहा है और रो रहा है, तो कभी दिल सख्त हो जाए ना, कभी दिल सख्त हो जाए और आंसू अपनी खुदा को याद करके ना आए। इस बीबी को याद करो, इसके मसायब ऐसे हैं कि बस नाम आता है और आंसू बहने लगते हैं, जैसे ही बीबी का तस्करा आता है आंसू निकले, फौरन अपने बारे में दुआ करो, परवरदिगार मेरी ये हाजत है इसको पूरा कर दे। कि बादे रहलत पैगंबर उम्मत ने ऐसी आंखें बदली, ऐसे दीदे बदले कि वो दरे फातिमा के जिस पे अल्लाह का रसूल आके कहता था अस्सलामु अलैके या अहले बैत नबुवा, उसी दर को उम्मत ने आके जला दिया। और रवायत का जुमला है कि रोज बरोज हर दिन, एक दिन की बात नहीं हो रही, यानी हर दिन फातिमा जहरा इतनी गमजदा हो जाती थी, उनका गम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था कि घर से घर मिला हुआ है अब तक अपने बाबा की कब्र पे ना जा सकी। सातवें दिन जब थोड़ा सा हाल संभला है ना, एक मरतबा अपने हुजरे से निकली है कब्र रसूल पे जाने के लिए, तो रवायत का जुमला है कि इतनी गम से निढाल थी कि आपकी चादर घिसड़ती हुई जा रही थी जो बार बार पांव में अटक रही थी। और इस हालत में जब कब्र रसूल पे पहुंची, जैसे ही नजर कब्र रसूल पे पड़ी, एक मरतबा अपने आप को कब्र पे गिरा दिया और बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो एक अजीब मरसिया कहा, कहा कि जो अहमद के कब्र की मिट्टी को सूंघ ले, यानी अहमद से मुराद यही रसूल खुदा की कब्र है, कहा जो अहमद मुख्तार की कब्र की मिट्टी सूंघ ले और वो सारी जिंदगी कोई खुशबू ना सूंघे तो उसने क्या नुकसान किया, यानी इतनी बेहतरीन खुशबू है इस तुर्बत की। मैं कहूंगा शहजादी आपके वालिद बीमार रहे, आपने खिदमत तो की ना। रसूल अल्लाह कोई अचानक तो इंतकाल नहीं हुआ था, बीमार रहे आपने खिदमत की। इंतकाल हुआ सारी उम्मत छोड़ के चली गई, लेकिन मुहाफिजत करने वाला भाई तो मौजूद था ना, कि जब अल्लाह के रसूल का दम निकला तो जानू रसूल पे निकला, और सारी उम्मत छोड़ के चली भी गई तो क्या हुआ? अली ने तने तनहा रसूल को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ी और ले जाके इज्जत से दफना भी दिया। मैं कहूंगा बीबी इतना एहतराम देखने के बावजूद भी आप जब कब्र रसूल पे पहुंची है तो एक मतलब अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, बेहोश हो गई। हाय 11 मुहर्रम का वो दिन, हाय 11 मुहर्रम का वो दिन कि जब बीबियों को बेकजावा ऊंटों पे सवार कर दिया गया। एक मर्तबा चाह करबला से नेके निकले, इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया इन बीबियों को करबला के मैदान के दरमियान से गुजारा जाए, इनको लाशों के दरमियान से गुजारा जाए। अरे अजीब मंजर है, बीबियां बेकजावा ऊंटों पे सवार है। एक मर्तबा अरे करबला के इस मैदान से गुजर रही है कि जहां नजर पड़े अरे कहीं असाबे हुसैन पड़े हैं, कहीं शहजादा अली अकबर का लाशा, कहीं कासिम का लाशा। अरे अब जो एक लाशा नजर आया, ज़ैनब ने अपने आप को हमारी से नीचे गिराया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ए बीबी ज़ैनब, अरे अपने आप को हमारी से क्यों गिरा दिया? अरे बीबी जवाब देगी अरे नहीं देखते, अरे मेरा वो भाई जिसे अम्मा ने चक्किया पीस के पाला था, अरे करबला की जल्दी रेत पे पड़ा है। सारी बीबियां आ गई, अपने अपने शोहदा को छोड़ दिया, एक मर्तबा हुसैन के लाशे पे आ गई, अरे बैन करना शुरू किए। ज़ैनब ने कैसे देखा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। सबने ये मंजर देखा, हुसैन का बेइज्जत बेसर का लाशा करबला की जल्दी रेत पे पड़ा है। एक मर्तबा हुक्म ये आया अरे बीबियों को सवार करो, कारवान को लेके जाना है। सारी बीबियां सवार हो गईं, अरे रबाब नजर ना आई। अरे पूछा गया रबाब कहाँ है, देखा रबाब अभी तक हुसैन के लाशे के पास बैठी है, अरे गिरिया कर रही है। अरे अजीजो ये वो बीबी है कि जो करबला में आई थी, जिसका सुहाग भी सलामत था, जिसकी कोख भी सलामत थी, लेकिन जब करबला के मैदान से गई अरे सुहाग भी उजड़ गया, गोद भी खाली हो गई। रबाब ने जब हुसैन को इस आलम में देखा, एक मर्तबा खुदा की बारगाह में कहा ए अल्लाह आज मैंने नवासे रसूल को इस आलम में देखा है। रबाब वादा करती है जब तक जिंदा रहेगी कभी साए में ना बैठेगी। रबाब कारवान के साथ चली, अरे कारवान कहीं साए में बैठ भी जाए, रबाब साए में नहीं बैठती है। अरे शाम का जिंदान है, अगर साया मिल भी जाए रबाब नहीं बैठती। रिहाई मिली, मदीने पहुंचे, अब तो अपना घर है ना, सब तो कमरे में बैठ गए, रबाब कभी कमरे में ना बैठती, हमेशा सहने खाना में धूप के नीचे बैठी रहती। एक दिन मदीने में बड़ी शदीद बारिश हुई, एक मर्तबा ज़ैनब ने आके कहा ए भाभी घर के अंदर आ जाइए, कहीं कोई आपको सदमा ना पहुंच जाए। अरे रबाब ने आने से इनकार कर दिया। ज़ैनब गई सैयद सज्जाद के पास, कहा ए बेटा सज्जाद, अरे देखो कितनी शदीद बारिश हो रही है, अपनी माँ को कमरे में लेके आ जाओ। सज्जाद के लिए कितना मुश्किल इम्तिहान पड़ गया, अरे माँ के पास किस तरह से जाके कहे ए मादर गिरामी अंदर आ जाइए, माँ नहीं आएगी। एक मर्तबा गए और जाने के बाद कहा ए मादर गिरामी घर के अंदर तशरीफ लाइए। रबाब ने अजीब सवाल किया सैयद सज्जाद काम गए। एक मर्तबा रबाब ने पूछा ए बेटा सैयद सज्जाद ये बताओ, अरे बेटा बन के कह रहे हो
یا امام بن کے حکم دے رہے ہو؟ سید سجاد کانپ گئے، اگر یہ کہے بیٹا بن کے حکم دے رہا ہوں ماں اندر نہ آئے گی، دل پہ پتھر رکھا، ایک مرتبہ کہا اے مادر گرامی امام بن کے حکم دیتا ہوں، بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ رباب کھڑی ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگارا رباب کے میں وعدے کی لاج رکھ لینا، ایک امام کی جنازے پہ وعدہ کیا، دوسرے امام کے کہنے سے جاتی ہوں، بس اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ قدم لڑکھڑائے، مدینے میں سید سجاد کی آواز گونجی، اے پھوپھی اماں میری ماں کو سنبھالو، رباب دنیا سے گزر گئی۔
اللہ ولعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی ہر دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ان کو شہزادی کونین کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بار الہ جو قید و بند کی زندگی میں ہیں ان کو قید و بند سے جلد سے جلد رہائی عطا فرما، انتقام خون حسین کے لیے اپنے آخری جوت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی گزارش ہے، مرحومہ ارجمن آرا صاحبہ کے لیے کہ جن کا آج انتقال ہوا ہے، ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ، ان کے لیے حاضرین مجلس کی تمام مرحومین خصوصاً علماء کرام مراجع کرام شہداء اسلام اور جو بھی جہاں جہاں بھی شیعان علی ہونے کے ناطے شہید کیا گیا، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔
مومن، یہ سلسلہ انشاءاللہ جمعہ 30 اپریل تک جاری رہے گا، یہ اشرف فاطمیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ لوگ سے پابندی ہے، گزارش ہے روزانہ